जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वन चारी, यमुना तीरा वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Ras Bihare, Radha Ras Bihare Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jai Sita Ram Lakshman Hanuman, Sita Ram Lakshman Hanuman. Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharya Shtotar Sat, His Divine Grace Abhay Charana Aravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Shri Shri Radha Raspihari Ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai, Shri Shri Sita Ram Lakshman Hanuman Ki Jai, Granth Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai, Shri Mahashivaratri Mahotsav Ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai, Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai, Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Praeshvapadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishthiki. Granth Raj Srimad Bhagavatam, 9th Skand, 1st Adhyay, Anshuman Ki Vanshavali, Shlok Sankhya 7. धारयिष्यति
ते
वेगं रुद्रः तु आत्मा शरीरिणां यस्मिन् ओतम् इदं प्रोतं विश्वं शाटी इव तंतुषु। धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु। धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां यस्मिन्नोतम् इदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु। धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणः यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु। धारयिष्यति ते वेगं स्वात्मा शरीरिणः यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु। माताजी, लेडीज, धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्वात्मा शरीरिणः यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु। धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु। धारयिष्यति, धारण करेगा, ते तुम्हारे वेगम, तरंगों के वेग को, रुद्रः शिवजी तो निस्संदेह आत्मा परमात्मा शरीरिणाम समस्त शरीरधारियों का यस्मिन जिसमें ओतम देशांतर ताना इदम यह सारा ब्रह्मांड प्रोतम अंक्षाश बाना विश्वम सारा विश्व शाटी वस्त्र इव सदृश तंतुषु डोरों में। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। जिस प्रकार वस्त्र के सारे डोरे लंबाई तथा चौड़ाई में गुथे रहते हैं, उसी तरह यह समग्र विश्व अपने अक्षांश देशांतरों सहित भगवान की विभिन्न शक्तियों में स्थित है। शिवजी भी भगवान के अवतार हैं, अतएव वे देश देहधारी जीव में परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपने सिर पर आपकी वेगवान तरंगों को धारण कर सकते हैं। तात्पर्य, गंगा जल शिव जी के सिर पर स्थित माना जाता है। शिव जी भगवान के अवतार हैं जो विभिन्न शक्तियों के सारे विश्व को धारण करते हैं। ब्रह्म संहिता में शिव जी का वर्णन इस प्रकार हुआ है, क्षीरम यथा तदभिकार विशेष योगात संजायते नहि ततः पृथगस्थि हेतो यः शम्भूतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जब दूध में जामन डाला जाता है तो यह दही में बदल जाता है, किंतु वास्तव में यह दही दूध के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। इसी प्रकार भगवान गोविंद भौतिक व्यवहार के निमित्त शिवजी का रूप धारण करते हैं। मैं भगवान गोविंद के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। शिवजी उसी प्रकार भगवान हैं जिस प्रकार दही दूध भी है और नहीं भी। भौतिक जगत के पालन हेतु ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर या शिव, ये तीन अवतार हैं। शिव जी विष्णु के तमोगुण अवतार हैं। यह जगत प्रधानतः तमोगुणी है, इसलिए शिव जी की उपमा यहाँ सारे विश्व के अक्षांश देशांतर से दी गई है, जो वस्त्र के तानों बानों के समान होते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्य भगवान् व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमपुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरहना परः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आज महाशिवरात्रि है। कई लोगों ने कल भी महाशिवरात्रि मनाई थी। वैसे कभी त्रयोदशी तो कभी चतुर्दशी की तिथि में होता है। कोई लोग त्रयोदशी मनाते हैं, कोई चतुर्दशी मनाते हैं। वैसे चार प्रकार के शिवरात्रि होते हैं। एक है जो रोज मनाया जाता है, जो शिव जी के उपासक होते हैं वो रोज शिव जी की उपासना ऐसे करते हैं। दूसरा है मास शिवरात्रि, हर महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में जो शिवरात्रि आती है वो भी शिव भक्त मनाते हैं। साथ साथ में तीसरी शिवरात्रि है माघ महीने के प्रथम तिथि अर्थात प्रतिपात से लेकर चतुर्दशी तक, और फिर चतुर्दशी महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। और चौथे प्रकार की शिवरात्रि है केवल माघ महीने के चतुर्दशी के रात्रि में महाशिवरात्रि मनाना। तो शिवरात्रि शिव जी के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ऐसे बताया जाता है कि यह दिवस शिव जी के लिए बहुत प्रिय है। और जो इस दिवस पर और विशेष करके रात में उपवास करके जागरण करके उनके पवित्र नामों का उच्चारण करता है वो उनके पास पहुंच जाता है। ऐसे भी कहा जाता है कि इस दिवस पर शिव जी और पार्वती देवी का विवाह हुआ था। तो खैर, ऐसे अनेक बातें हैं महाशिवरात्रि के बारे में। शिव जी विशेष रूप से बेल पत्रों के द्वारा पूजित होते हैं। जिस प्रकार से श्री कृष्ण तुलसी के द्वारा पूजित हैं, उसी प्रकार शिव जी बेल पत्र के द्वारा पूजित होते हैं। इसलिए इस दिवस पर शिव जी के भक्त उनको बेल पत्र अर्पण करते हैं शिवलिंग के ऊपर। शिव जी वैसे हैं कौन? यहाँ पे इस श्लोक में जो नौवें स्कंद में है हम पढ़ रहे हैं कि इस भौतिक सृष्टि में शिव जी का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें शिव जी का योगदान नहीं है। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में बताते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं ततः पृथक अस्ति हेतो यह शंभुताम अपि ततः समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वो कहते हैं कि मैं उन गोविंद का नमन करता हूँ जिनसे जिनके आदेश के अनुसार शिवजी अनेक कार्य संपन्न करते हैं। यदि गोविंद दूध के समान हैं तो शिवजी दही के समान हैं। और ऐसा एक रूप शिवजी स्वीकार करते हैं या भगवान स्वीकार करते हैं और शिवजी बन जाते हैं, यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्याद। समुपैति मतलब वो ग्रहण करते हैं या स्वीकार करते हैं, और कार्याद मतलब कोई विशेष कार्य। तो भगवान भगवान विष्णु या श्री कृष्ण शिव जी का विशेष रूप स्वीकार करते हैं कोई विशेष कार्य संपन्न करने के लिए। जिस प्रकार से दूध और दही में अंतर है भी और नहीं भी, उसी प्रकार शिव जी और श्री कृष्ण में अंतर है भी और नहीं भी। दही दूध नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, और दही दूध है ऐसा भी नहीं कह सकते। उसी प्रकार से शिवजी कृष्ण नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, और शिवजी कृष्ण हैं ऐसा भी नहीं कह सकते। तो ये विशेष बात है, इसलिए दही और दूध ये जो उपमा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम शिव तत्व को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और दूध दही कब बन जाता है? जब कोई विकार उसमें आ जाता है। आपने कोई नींबू की बूंद डाल दिए, नींबू रस की बूंद डाल दिए, तो वो दूध दही बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि श्री कृष्ण या श्री विष्णु जी ऐसा कौन सा विकार स्वीकार करते हैं जिसके द्वारा उनका रूप शिवजी में परिवर्तित हो जाता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने ब्रह्म संहिता के टीकाओं में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब इस भौतिक सृष्टि के तमोगुण को स्वीकार करते हैं, तमोगुण का स्पर्श करते हैं, तब वो शिवजी बन जाते हैं। इसलिए शिवजी का स्थान बहुत ही विशेष है, क्योंकि न तो शिवजी हम सब जैसे कोई साधारण जीवात्मा है, और न ही वो भगवान कृष्ण या विष्णु के स्तर में है। न वो जीव तत्व है, न वो विष्णु तत्व है, न वो शक्ति तत्व है। उनका स्थान विशेष है, निराला ही है, शिव तत्व। तो ऐसे क्यों होता है कि भगवान ऐसे तमोगुण का स्पर्श करते हैं? इसका उत्तर है, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक सृष्टि में तमोगुण का प्राधान्य है, सत्वगुण की मात्रा बहुत कम है, रजोगुण भी है, लेकिन अधिकतर तमोगुण है। विशेष करके जब सृष्टि का विनाश करने का समय आता है तो शिवजी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। और इतना ही नहीं, शिवजी सृष्टि के सृजन के समय भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका वर्णन ब्रह्म संहिता में है, परंतु इसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे। साथ साथ शिवजी सृष्टि के पालन में भी सहायता करते हैं, असुरों का नाश करके। शिवजी तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं। ब्रह्मा जी जिस प्रकार से रजोगुण के अधिष्ठाता देव हैं, और भगवान विष्णु सत्वगुण के अधिष्ठाता देव हैं, उसी प्रकार से शिवजी ने तमोगुण का दायित्व है वो स्वीकार किया हुआ है। और क्योंकि वो तमोगुण का दायित्व स्वीकार करते हैं, इसलिए तमोगुण का स्पर्श उनको करना पड़ता है, और ऐसे स्पर्श के कारण वो विष्णु तत्व नहीं रह जाते हैं। तो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण एक अपने आप से भिन्न स्वरूप स्वीकार करते हैं जो कि तमोगुण का स्पर्श करता है, और ऐसे स्पर्श के कारण वो शिव तत्व कहलाते हैं, विष्णु तत्व नहीं। तो शिव जी ऐसे तमोगुण का स्पर्श करते हैं और सृष्टि के विनाश के कार्य में मदद तो करते हैं, परंतु ये भौतिक सृष्टि माया शक्ति है, माया शक्ति दुर्गा देवी है और दुर्गा देवी के पति कौन है? शिव जी। भगवान कृष्ण कभी माया का स्पर्श नहीं करते हैं, परंतु माया तो भगवान शिव जी की तो पत्नी है, तो स्पर्श तो है ही। इसलिए भगवान विष्णु और शिव जी में ये अंतर है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में ये बताया जाता है कि जब व्यासदेव जी अपने आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर ध्यान में बैठे थे, नारद मुनि के साथ संवाद होने के पश्चात, तो अपने परिपक्व ध्यान की अवस्था में उन्होंने भगवान कृष्ण या विष्णु का दर्शन किया। भक्ति योगे न मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यतम पुरुषम पूर्णम माया चतत अपाश्रयम्। सुत गोस्वामी कहते हैं कि पूर्ण भक्ति योग में अपने आप को विलीन करके, अपने मन को और इंद्रियों को वश में करके, पूरी तरह से भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करके भगवान का दर्शन व्यासदेव जी ने किया। लेकिन भगवान अकेले नहीं थे, माया चतत अपाश्रयम्, माया देवी वहाँ थी जो कि भगवान श्री कृष्ण की सदैव वशीभूत रहती हैं। और माया देवी क्या भगवान का स्पर्श कर रही थी? क्या माया देवी भगवान कृष्ण के निकट थी? नहीं, बहुत दूर थी। ऐसा दृश्य या ऐसा दर्शन व्यासदेव जी ने अपने ध्यान में किया। कहने का तात्पर्य ये है कि माया देवी सदैव भगवान से दूर रहती हैं, यद्यपि वो भगवान की सेविका हैं, वो जो भी इस सृष्टि को संभालती हैं, जो भी कार्य करती हैं भगवान की सेवा में करती हैं, फिर भी वो भगवान से दूर रहती हैं, दूर से ही सेवा करती हैं। और भगवान कभी प्रत्यक्ष रूप से माया देवी का स्पर्श नहीं करते हैं। जब भगवान माया का स्पर्श करना चाहते हैं सृष्टि के सृजन के समय, उस समय वो शिवजी का प्रयोग करते हैं। इसलिए शिवजी का स्थान सृष्टि के सृजन के कार्य में भी है, क्योंकि शिवजी तो माया के पति हैं। इसलिए भगवान विष्णु शिवजी का रूप स्वीकार करते हैं माया का स्पर्श करने के लिए। तो माया का स्पर्श करने के लिए ही ये अवतार हैं भगवान के। तो ऐसे भगवान के अवतार को शंभू कहते हैं। जब महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं माया देवी के ऊपर, तो वो दृष्टिपात का रूप शिवजी का है। शिवजी जाके स्पर्श करते हैं माया देवी से। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी समझाते हैं अपने तात्पर्यों में कि ये भौतिक सृष्टि कौन है? ये माया देवी है। इसलिए माया देवी या दुर्गा देवी जगत की माता हैं और उनके पति शिवजी हैं, तो शिवजी जगत के पिता हैं। परंतु भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम् बीज प्रदः पिता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जितने भी 84 लाख योनियां हैं इस सृष्टि में, इन सब का बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ। तो एक ओर हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सारे जीवों के पिता हैं इस ब्रह्मांड के भीतर, और दूसरी ओर हम ये सुनते हैं कि शिवजी पिता हैं। तो फिर सही क्या है? उत्तर ये है कि मूल पिता तो भगवान कृष्ण हैं, परंतु शिवजी उनका प्रतिनिधित्व करते हुए पिता के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण माया देवी से प्रत्यक्ष स्पर्श नहीं करते हैं। इसलिए शिवजी हम सबके पिता है। और दुर्गा देवी हम सबकी माता है। तो ये शंभु और माया जो महाविष्णु के साथ में रहते हैं, वही शंभु हर एक ब्रह्मांड के भीतर शिवजी या रुद्र का रूप स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से महाविष्णु अपने आप को विस्तार करते हैं और हर एक ब्रह्मांड के भीतर गर्भोदकशायी विष्णु बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से महाविष्णु के साथ रहने वाले जो शंभु तत्व हैं वो हर एक ब्रह्मांड में शिवजी बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया है, यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात्। तो इनको शंभु कहते हैं। और ये शंभु है कौन? ये शंभु वास्तव में भगवान सदाशिव के ही विस्तार है। ये सदाशिव भगवान विष्णु हैं जो वैकुंठ लोक में रहते हैं, चतुर्भुज नारायण रूप है सदाशिव। तो ये चतुर्भुज नारायण स्वरूप सदाशिव के विस्तार ये शंभु है। इस प्रकार से शिव तत्व को हम जान सकते हैं। तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि शिव जी भगवान के अवतार हैं, गुण अवतार हैं। जैसे ब्रह्मा जी रजगुण के अवतार हैं भगवान के, उसी प्रकार से शिव जी भी गुण अवतार माने जाते हैं। तो ये है महत्वपूर्ण बात शिव जी के बारे में। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण एक बात है, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदं तथा। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। जितने भी पुराण हैं उनमें से सर्वोच्च पुराण श्रीमद् भागवत पुराण है। तो इसकी उपमा देने के लिए व्यास देव जी बताते हैं कि जिस प्रकार से नदियों में से सर्वश्रेष्ठ गंगा देवी हैं, देवों में से सर्वश्रेष्ठ अच्युत या श्री कृष्ण हैं, वैष्णवों में से सर्वश्रेष्ठ जिस प्रकार से शिव जी हैं, उसी प्रकार से पुराणों में से सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत है। तो श्रीमद् भागवत की महिमा करते करते शिव जी की महिमा का गान भी हुआ है। तो शिव जी न केवल भगवान के गुण अवतार हैं, न केवल भगवान के एक विस्तारित रूप हैं जो इतने सारे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं सृष्टि के सृजन पालन और संहार के लिए, परंतु वो एक बहुत बड़े वैष्णव हैं, अर्थात वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। सर्वश्रेष्ठ वैष्णव माने जाते हैं शिव जी, और इसलिए हम शिव जी को प्रणाम करते हैं, इसलिए हम शिव जी को पूजते हैं। प्रभुपाद जी से एक बार किसी भक्त ने पूछा कि शिव जी का सम्मान क्या हमें करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, एक वैष्णव एक चींटी को भी सम्मान देता है, और वैष्णवों की सेवा तो करता ही है दूसरा एक कोई वैष्णव, हर एक वैष्णव को हमें सम्मान करना चाहिए। तो फिर शिव जी जो सबसे महान वैष्णव है, उनको हम भला क्यों सम्मान नहीं करेंगे? उनका सम्मान और आदर अवश्य करना चाहिए, कभी भी उनका निरादर नहीं करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। शिव जी की निंदा करना मतलब भगवान कृष्ण की निंदा करना। और जो व्यक्ति शिव जी का संबंध श्री कृष्ण से देखता है और इस भाव से शिव जी की स्तुति करता है, तो वो भी कृष्ण की स्तुति है। तो शिव जी महान वैष्णव होने के नाते सारे वैष्णव उनको बहुत सम्मान करते हैं, उनको मानते हैं। ऐसे बताया जाता है श्रीमद् भागवत में कि गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की थी, कात्यायनी व्रत का पालन किया था। कात्यायनी देवी कौन है? दुर्गा देवी है। लेकिन उन्होंने दुर्गा देवी की उपासना क्यों की? ताकि उनको श्री कृष्ण प्राप्त हो जाए। दुर्गा देवी की उपासना उन्होंने इसलिए नहीं की कि उनको बहुत धन मिल जाए, इंद्र तृप्ति मिल जाए, ऐसे नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से नंद महाराज और अन्य जो ब्रजवासी हैं, वो एक बार वृंदावन छोड़ के गुजरात में चले गए, जहाँ अंबिका वन नाम का स्थान है। वो शिवरात्रि के अवसर पे वहाँ जाना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कभी कभी, हर बार नियमित रूप से नहीं, परंतु कभी कभी वैष्णव भी शिवरात्रि मनाते हैं। तो नंद महाराज और ब्रजवासी गुजरात में गए, वहाँ पे सरस्वती नदी के तट पर अंबिका वन नाम का स्थान है, जो शिव जी का स्थान है, और वहाँ पे पास में अंबिका देवी या दुर्गा देवी का मंदिर भी है, क्योंकि जहाँ शिव जी हैं वहाँ दुर्गा देवी तो रहेंगी ही। तो वहाँ शिवरात्रि मना के फिर नंद महाराज और अन्य ब्रजवासी वृंदावन लौट के चले आए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिव जी की उपासना करना ये गलत नहीं है, वैष्णवों के लिए बल्कि उचित है कि हम उनका पूरा सम्मान करें, परंतु शिव जी के पास जाएं तो इस उद्देश्य से जाएं, इस प्रार्थना को लेकर जाएं कि हमें आप श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्रदान करें, हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें, ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। परंतु श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, यदि हमने शिव जी की उपासना इस भावना से की कि शिव जी भगवान कृष्ण से स्वतंत्र हैं, वो एक स्वतंत्र भगवान हैं, तो ये ठीक नहीं होगा, इससे लाभ नहीं होगा, बल्कि ये एक अपराध माना जाएगा। शिव जी को भी ये पसंद नहीं है और न ही भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे, बल्कि शिव जी चाहते हैं कि हम सब कृष्ण की भक्ति करें। प्रभुपाद और एक जगह बताते हैं कि शिव जी को महान वैष्णव मानना और इस दृष्टि से उनकी उपासना करना ये बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु शिव जी को यदि हम स्वतंत्र भगवान कह के संबोधित करें तो वो शिव जी की स्तुति नहीं होगी, शिव जी का अपमान होगा, शिव जी की निंदा होगी। प्रभुपाद ने कहा अपने शिष्यों से कि यदि आप मेरे बारे में ऐसे कहोगे कि मैं आपका गुरु हूँ तो ये सही है, परंतु यदि बहुत बढ़ा चढ़ा के आप बात कहोगे कि मैं विश्व सम्राट हूँ, ये तो सही नहीं है, तो मेरा अपमान हो जाएगा। ये अति स्तुति भी कभी निंदा के बराबर होता है ना। एक उदाहरण देते हैं, सादा सा एक उदाहरण। समझ लीजिए, कोई भक्त आपके पास आते हैं और कहते हैं कि आपने सेवा बहुत अच्छी तरह से कर ली, हृदय से आपको कहते हैं बहुत अच्छी सेवा की आपने, आप अच्छे भक्त हैं। हालांकि कोई वैष्णव अपनी स्तुति सुनना तो नहीं चाहता, परंतु जब सामने वाला वैष्णव एक दो शब्द ऐसे कुछ कह देता है हृदय पूर्वक, तो हमें थोड़ी बहुत प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है भक्ति करने के लिए। परंतु यदि वही व्यक्ति आपके पास आके कहे कि आपकी तरह दुनिया में कोई भक्त नहीं है, ना तो भूतकाल में आज तक कोई हुआ है, ना है, ना भविष्य में आपके जैसा कोई भक्त होगा, आपकी कोई तुलना नहीं है, सर्वश्रेष्ठ भक्त आप ही हैं, तो फिर स्वाभाविक है कि आप सोचने लगेंगे कि कुछ गड़बड़ है, ये या तो मजाक उड़ा रहा है हमारा, या तो मेरी निंदा कर रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से शिव जी को जो हैं वैसे हम मान के हम स्तुति करेंगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ये उनकी स्तुति होगी। परंतु शिव जी जो नहीं हैं, वो कह के उनको हम संबोधित करेंगे और उनकी स्तुति करेंगे, तो ये स्तुति नहीं होगी बल्कि ये निंदा हो जाएगी शिव जी की। इसलिए हमारे लिए ये एक महत्वपूर्ण बात है, इस दृष्टिकोण से हम शिव जी को देखते हैं और शिव जी की उपासना हम करते हैं। वैसे शिव जी के बारे में तो कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु आने वाले अब आज कल और परसों के शाम को शिव जी के बारे में और हम चर्चा करेंगे, परंतु आज हम एक भजन गाना चाहते हैं इस प्रवचन के अंत में। अभी श्री शिवाष्टकम, ये वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं गाया था और इसका वर्णन मुरारी गुप्त के श्री चैतन्य चरित महाकाव्य में है। तो ये कागज आप सबके पास है तो कृपया इसको देखिएगा, हम इस ये भजन साथ साथ अभी गाएंगे, मेरे पीछे पीछे आप गाइएगा। इसके पहले इसका अनुवाद हम पढ़ लेते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं शिव जी से, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ जो 30 प्रमुख देवताओं के नियंत्रक हैं, जो सभी जीवों के आदि पिता हैं, जिनका चरित्र अत्यंत मृदु है, जिनका सिर गंगा के तरंगों से उदित चंद्रमा से सुशोभित है और जो गौरी देवी के नेत्रों के लिए उत्सव के समान हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ जिनके वस्त्र तपते सोने, चंद्रमा, नील कमल, मूंगे और वर्षा के घने बादलों के समान हैं, जो अपने नृत्य द्वारा अपने भक्तों को इच्छित वर प्रदान करते हैं, जो निराकारवादियों के स्वामी हैं और जिनकी ध्वजा बैल के चिन्ह से अंकित है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो अपने चंद्रमा, सूर्य और अग्नि सदृश 3 नेत्रों से अंधकार को दूर करते हैं, जो ब्रह्मांड के सभी जीवों के लिए मंगलता निर्माण करते हैं और जिनकी शक्ति सहस्रों सूर्य और चंद्रमाओं के को सरलता से परास्त कर देती है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ जिनका रूप नागराज श्री अनंत देव के दैदीप्यमान रत्नों से प्रकाशवान है, जो सिंह चर्म धारण करते हैं और दिव्य तेज विस्तारित करते हैं, जो सहस्र पंखुड़ियों वाले कमल पर विराजते हैं और जिनकी दोनों भुजाएं तेजस्वी कड़ों से सुशोभित हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो नूपुरों से सजे लालिमा युक्त अपने दोनों चरणों से अमृत बरसाकर अपने सेवकों को आनंद प्रदान करता है। आपको प्रणाम है जो अनेक विचित्र रत्नों से विभूषित हैं, कृपया मुझे भगवान हरि के प्रति शुद्ध प्रेम प्रदान करें। हे श्री राम, हे श्री गोविंद, हे मुकुंद, हे शौरी, हे श्री कृष्ण, हे नारायण, हे वासुदेव, आप इन एवं अन्य पवित्र नामों के अमृत का पान कर मदोन्मत्त हुए भवरों के समान भक्तों के स्वामी हैं और आप समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ जिनके विषय में श्री नारद एवं अन्य ऋषि गुप्त रूप से जिज्ञासाएं करते हैं और जो उन्हें सरलता से वर प्रदान करते हैं, जो उन्हें हरि भक्ति का सुख प्रदान करते हैं, जो शुभता निर्माण करते हैं और जो सभी के गुरु हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो देवी गौरी के नेत्रों के लिए मंगलकारी उत्सव के समान हैं, जो उनके प्राणनाथ हैं, जो दिव्य रस प्रदान करने में सक्षम हैं, जो सदैव भगवान गोविंद की लीलाओं का उत्कंठा के साथ गान करने में दक्ष हैं, जो व्यक्ति प्रेम भाव, आदर और ध्यान पूर्वक भगवान शिव के प्रति इन 8 प्रार्थनाओं को सुनता है, वह शीघ्र ही श्री हरि प्रेम प्राप्त करता है, साथ ही साथ वह दिव्य ज्ञान, उस ज्ञान का साक्षात्कार और अपूर्व वैभव भी प्राप्त करता है। यदि आप सबको कृष्ण प्रेम चाहिए, जैसा चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तो कृपया आइए, साथ साथ ये शिवाष्टकम हम गाते हैं। नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय भूतादिनाथाय मृदाय नित्यम् चंद्र चूड़ाय गौरी नयनोत्सवाय सुतप्त चामी करचंद्र नील पद्म प्रवालां बुदकांति वस्त्रे सुनृत्य रंगेष्ट वर प्रदाय कैवल्यनाथाय वृषध्वजाय सुधांशु सुराग्नि विलोचनेन तमोभिदेते जगत शिवाय सहस्रशुभ्रांशु सहस्ररश्मि सहस्र संजीवार तेजसेस्तु नागेशरत्नो जलवेग्रहाय शार्दूल चर्मा शुक दिव्य तेजसे सहस्र परतो परिसंस्थिताय वरांगदामुक्त भुजद्वयाय सुनो परांजे तपाद पद्म शरद सुधा भृत्य सुख प्रदाय विचित्र रत्नो गविभूषिताय प्रेमानमेवाद्य हरो विदेहि श्रीराम गोविंद मुकुंद शौरे श्रीकृष्ण नारायण वासुदेव पान मत्त भृंगाधिपाया खिल दुख हंत्रे सा jigyasitaya shuvara pradaya tebhyo hari bhakti sukha pradaya shivaya sarva gurave namaha Shri Gauri Netrotsava Mangalaya Tat Prana Nathaya Rasa Pradaya Samutkantha Govinda Leela Gana Praveenaya Namostu Prabhyam Etachivasyashtakamadbhutammah Shrinvan Hari Prema Labheta Shigram Jnanam Cha Vijnanam Apurva Vaibhavam Yobhava Purna Paramam Samadaram Pathedyaitam stavamam bhujaksha Kritam purare purushottamasya Sudurlabham yan muni deva vindaye Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Shiv ji ki jai, Shri Shivaratri ki jai, Shri Shri Radha Ras Bihari ji ki jai, Gaur Premanande. Srila Prabhupada ki jai, Hare Krishna. Dhanyavad.